तो विघ्नेश की ये विधि देख करके भगवान ने अपना कच्छप रूप बनाया और जब वो और ऊपर जाने लग गया, भाई वो मंदराचल पर्वत नीचे जावे तो भी बिलोना नहीं होगा और ऊपर ही चला जाए तो भी बिलोना नहीं होगा, बीच में रहना चाहिए। तब भगवान सहस्रबाहु होकर के उसको हजारों भुजाओं से उस पर्वत को ऊपर हाथों से रोक रहे हैं कि और ऊपर न जावे। अब मंथन होने लगा, अब मंथन होने लगा तो वासुकी नाग था, उसकी कोमल कोमल त्वचा है वो रगड़ के कारण से खराब होगी त्वचा उसकी, वो बेहोश होने लगा। भगवान ने देखा ये बात भी ठीक नहीं, तब भगवान ने देखा कि भाई अब तो कुछ न कुछ लीला करनी चाहिए। तो एक ही इस लीला के अंदर अब भगवान क्या करते हैं कि वासुकी नाग में तो नींद बन करके घुसते हैं, देवताओं में देवताओं का बल बन करके घुसते हैं, और असुरों में असुरों का बल करके अपना प्रवेश करते हैं, और फिर वहां पर वो समुद्र मंथन हो ही रहा है सहस्रबाहु रूप से मंदराचल के ऊपर और कमठ रूप से कछुए के रूप से नीचे है समुद्र का मंथन हो रहा है। उस समय में वासुकी नाग के मुख से जहर निकला है, जहर के झाग वहां पर गिर रहे हैं और पौलोम काले अबले इलवल इत्यादि सब के सब जो बड़े पराक्रमी राक्षस थे वे सब घबरा गए हैं और देवता लोग भी घबरा गए। सब ने कहा कि हे अजित, अब हमसे समुद्र मंथन नहीं होता है। भगवान ने कहा अच्छी बात है, हटो, तुम दोनों ही हट जाओ। क्या सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज भगवान का कि मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युन मूर्धनि भ्राजत विलुलित कच श्रग्धरो रक्त नेत्र जेत्रैर दोर्भिर जगद भयदैर दंद शूकं गृहीत्वा मथनन मथना प्रतिगिरिवा शोभताथोद्धृताद्रिहि। भगवान ने पूंछ भी पकड़ ली, मुंह भी पकड़ लिया और भगवान स्वयं बिलोना करने लग गए। भगवान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले हैं, उन्होंने सोने की करधनी पहन रखी है, कानों के कुंडल हैं वो जगमगा रहे हैं, घुंघरालू बाल उनके सिर के ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनके लाल लाल नेत्र हैं, माला को उन्होंने धारण की है और अपने चमकीले आभूषणों से सुशोभित भुजाएं, उन भुजाओं को वो बिलोना करते हुए समुद्र मंथन करते हुए हिला रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक समुद्र एक पर्वत को पकड़ करके कोई दूसरा ही पर्वत वहां पर बैठा हुआ ये समुद्र का मंथन कर रहा है। मंथन करते 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 सबसे पहले हलाहल जहर निकला, वो हलाहल जहर जो ही बाहर आया सब एकदम घबरा गए, दूर दूर तक उस जहर की ज्वालाएं जा रही थी। तब प्रजा बड़ी भयभीत हुई, अब क्या करें क्या करें। तो भाई सब के सब बड़े घबराए, तो घबराए तो फिर वहां शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर भगवान की शरण में गए, शंकर भगवान से कहा महाराज आप कोई उपाय करो, ये हलाल जहर इसमें से निकला है, त्रिलोकी की आप रक्षा कीजिए। बवा ये देव्या भी मतम मुनि नाम, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में वे शंकर भगवान बैठे हुए थे, पार्वती जी भी वहां बैठी हुई थी, उन सब के बीच में जब शंकर भगवान के सामने वो जहर लाकर प्रजापति प्रार्थना करने लगे तो भगवान शंकर उनकी प्रार्थना सुनने लगे। प्रजापति कह रहे हैं हे देवादिदेव, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, केवल हमारे ही नहीं संपूर्ण त्रिलोकी इस अलाहल जहर से ध्वस्त हो जाएगी, जल जाएगी, आप हमारी रक्षा करो। सारे संसार को आप बनाने वाले हैं, विष्णु रूप से आप, ब्रह्मा रूप से आप, शिव रूप से आप, सद असद भाव भावन है, कार्य कारण रूप से आप हैं, सबका पालन करने वाले हैं, आप शब्द योनि है, शब्दों के द्वारा आपको जाना जाता है, प्राण इंद्रियां इन सब के आप स्वामी हैं, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपका चरण है, काल आपके कदम है माने गति है, कान दिशाएं आपके कान है, जल है वो आपका आपकी शक्ति है, और आकाश आपकी नाभि है, सूर्य आपका नेत्र है, और चंद्रमा आपका मन है, समुद्र आपकी कोखे है, पर्वत आपकी हड्डियां हैं, जितने वृक्षावलियां हैं सब के सब आपके रोम हैं, और महाराज रक्षा करो आप, आपका नाम शिव है, साक्षात आप परमार्थ तत्व है, आप अधर्मियों को जीतने के लिए अपने तीसरे नेत्र को खोला करते हैं, हे प्रभु आपके अलावा कोई हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, कामदेव को आपने नष्ट किया और तीन पुरों को मयासुर का मय दानव के तीन पुर थे, कल कथा सुने थे, उनको आपने नष्ट किया, दक्ष का जो यज्ञ था उसको आपने नष्ट किया है, सारे विश्व को आप अपने एक नेत्र के क्रोध से सबको समेट लेते हैं, इतना आपके अंदर बल है, बड़े बड़े आत्मज्ञानियों ने आपके चरणों को अपने हृदय में धारण किया है, इसलिए हे नाथ आप हमारी रक्षा करो, आपका नाम लेने से बड़े आसानी से लोग तर जाया करते हैं, ब्रह्मा आदि हम सब आपके शरण में हैं, आप जैसे तैसे हमारी रक्षा करो, तत्सर्ग सर्ग विषया, माने ब्रह्मा जी भी आपसे ही पैदा हुए हैं, ब्रह्मा जी से पैदा होने वाले मरीचि आदि वो भी आपसे पैदा हुए हैं, सबके आप कारण हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। शंकर भगवान ये बात सुनकर के मुस्कुराए और मुस्कुराए तो देखा कि भाई अब सती की सलाह ले लेनी चाहिए, सती क्या बोलती है, सती से कहा कि देखो भवानी प्रजा के ऊपर बड़ा भारी कष्ट है, ये बेचारे अमृत निकालने गए थे और कालकूट जहर इनके यहाँ मिल गया, इनको जहर इनको मिल गया, तो इन लोगों की प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। देखो पार्वती बड़ा आदमी वही है, सामर्थ्यवान वही है कि स्वयं कष्ट पाकर के भी दूसरों की सहायता करता है, अपने प्राणों को संकट में डाल करके भी दूसरों को बचाने वाला सदा ही अमर हो जाता है, और सर्वात्मा प्रियते हरि और भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान के प्रसन्न हो जाने के बाद में फिर कोई किसी प्रकार से चिंता की बात ही नहीं, सब जीवन में प्रसन्नता अपने आप ही आती है। यदि हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं आ रही है तो विचार करना चाहिए कि हमारे क्रियाकलापों से भगवान प्रसन्न नहीं है, भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान हमारे चित्त में प्रसन्नता ला ही देंगे, तो भगवान को प्रसन्न करना है, अतः ये जहर मैं पीना चाहता हूं, प्रजा का कल्याण होगा। भवानी है वो विश्व भावन विश्व पालक, शंकर भगवान की शक्ति को जानती थी, उन्होंने बड़े प्रेम से अनुमोदन किया कि महाराज आपकी इच्छा है और भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर मेरे से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, आप इस जहर को स्वीकार कीजिए। उस समय में वो जहर उन्होंने लिया महादेव ने और भगवान का स्मरण किया, स्मरण करके उस जहर को उन्होंने पी लिया, उस जहर को न तो गले के बाहर मुंह में आने दिया और न ही गले से उन्होंने नीचे जाने दिया, भगवान के नाम के प्रभाव से उन्होंने अपने उस जहर को कंठ के अंदर ही रख लिया, तब से भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अब वो जहर पीते पीते उसकी एक बूंद थी वो बाहर गिर गई, जितना संसार में औषधियों में जहर है, पशुओं में पक्षियों में जो जहर है वो केवल कालकूट का एक बूंद था उसकी जहर है। अब उसके बाद में सब लोगों ने विचार किया कि देखो एक बूंद से इतना जहर फैला हुआ है, यदि वो सारा का सारा कालकूट रहता तो कितना वो जहर सृष्टि में फैलता, सृष्टि जी नहीं सकती थी। शंकर भगवान ने जब जहर पी लिया तो देवता अमर दानव सब प्रसन्न हो गए, अब फिर उसका मंथन करने लगे, तो सबसे पहले अब गाय निकली तो कहा कि अब गाय को कौन रखे भाई, न तो देवताओं ने चाहा न असुरों ने चाहा, ऋषि मुनि वहां बैठे थे उनका गाय हमको दे दो, गाय है तो हमारे पास सब कुछ है, गाय होगा दूध होगा घी होगा यज्ञ करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान तक पहुंचाने का काम इस गाय का है तो चलो गाय हमको दे दो। इतने में ही उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला, इंद्र का मन तो लपलपाया कि घोड़ा हमको मिले, लेकिन बलि ने कहा कि भाई घोड़ा तो हम रखना चाहेंगे, तो इंद्र ने कह दिया अच्छी बात है आप रखो। अब ऐरावत नाम का हाथी निकला तो देव असुर लोग कुछ नहीं बोले, तो इंद्र ने कहा चलो ये हम रख लेते हैं, तुम रख लो। अब कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान ने कहा भी देखो हमने इतना काम किया, ये कौस्तुभ मणि तो हम लेंगे, अच्छी बात है आप ले लो। अब वो पारिजात वृक्ष कल्प वृक्ष निकला तो कहा इसको कौन लेगा, कि देखो भाई वृक्ष होता है वो एक की संपत्ति नहीं है, वृक्ष सबकी संपत्ति होती है, इसको ले जाकर स्वर्ग में रख दो सबके काम आएगी। अप्सराएं निकली कहते हैं अप्सराओं को भी ले जाकर स्वर्ग में रख दो। और उसके बाद जब मंथन हुआ तो साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। ज्यों ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई, देवताओं ने धुंधवियां बजाई, फूलों की वर्षा की, और उसी समय में इंद्र भगे भगे गाए, एक दिव्य सिंहासन लाए और सिंहासन पर उनको बैठाया। गंगा आदि नदियां देखी, क्या हमारी सारी स्त्री जाति को पवित्र करने के लिए लक्ष्मी जी आई है। बड़े बड़े ऋषियों ने आशीर्वादात्मक वचन कहना चालू किया और गंधर्व लोग नाचने लग गए, गाने लग गए। समुद्र ने उनको बहुत अच्छा उपहार दिया, पीताम्बर उनको दिया, वरुण देवता ने उनको बहुत सुंदर वैजयंती माला दे दी और मधु ने उनको बहुत सुंदर एक दूसरी माला दे दी और भूषण है ये प्रजापति ने दे दिए, सरस्वती ने एक हार दे दिया, नागों ने उनको कुंडल दे दिया। सब ने अपनी अपनी शक्ति से उसको सजाया और जब उसको सजाया तब उसके बाद में उन्होंने एक हाथ में माला ली। माला की सुगंध बहुत दूर तक फैल रही थी, भौरे उस माला के चारों ओर गुनगुना रहे थे और कहा कि अच्छी बात है, अब आप इनमें से किसी को भी पति बनाओ। सब अकड़ धकड़ करके बैठ गए, असुर थे, दानव थे, बहुत यूं सज धज करके बैठे कि हमारे गले में माला डालेगी, हमारे गले में माला डालेगी। गंधर्व है, यक्ष है, असुर है, सिद्ध है, चारण है, ये सब वहां पर बैठे हुए थे। तो आप परिचय कराया गया कि देखो महाराज, ये बहुत बड़े भारी तपस्वी हैं, लेकिन बात बात में इनको क्रोध आ जाता है। लक्ष्मी जी आगे निकल गई कि तपस्या करे और क्रोध आ जाए। अरे तपस्या का मतलब केवल सर्दी गर्मी सहना ही थोड़ा ही होता है, तपस्या का अर्थ होता है अपने मन में उठने वाले विकारों को सहन करना, वो तपस्या होती। आगे निकल गए, कहने महाराज ये बड़े भारी ज्ञानी है, इनको बहुत ज्ञान है। वह एक बात है, शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत है लेकिन संसार में आसक्ति बहुत है, तो छोड़ो इनको भी। आगे निकले, कह महाराज ये बड़े महान है लेकिन जब इनके मन में कोई बात उठ जाती है तो उसकी पूरा करके ही छोड़ते हैं कि चलो आगे, ये तो कामदेव से हारे हुए हैं। कह महाराज ये बहुत बड़े हैं, बड़े सामर्थ्यवान हैं, कभी कभी दूसरों की सहायता से बड़ा काम कर लेते हैं। अरे सामर्थ्यवान होकर दूसरे की सहायता लेगा, चलो आगे। आगे गए कि महाराज ये बड़े धर्मात्मा हैं लेकिन हर बात पर चिढ़ने लग जाते हैं, प्राणियों से प्रेम नहीं करते। लक्ष्मी जी ने मुंह फेर लिया कि हमारे लायक नहीं है। कि महाराज ये बड़े भारी त्यागी है, त्यागी त्यागी त्याग करते हैं। अरे भाई त्यागी त्याग करते हैं तो कल ने हमारा ही त्याग कर देंगे, चलो आगे चलो। तो वो आगे निकल गए। कह महाराज ये बहुत बलवान है लेकिन इनकी आयु बहुत थोड़ी है। फिर आगे निकल गए, कहते हैं कि इनकी आयु बहुत है लेकिन आचार विचार इनका अच्छा नहीं है, जीवन व्यवहार अच्छा नहीं है, तो फिर उनको छोड़ दिया। इस प्रकार से जिन जिन के पास में लक्ष्मी जी गई, उन उनके पास में गुण के साथ में थोड़ी थोड़ी दोष की बात देखी, तब देखा कि सर्वगुण संपन्न एक ये अजित भगवान है। आपने वो माला ली और अजित भगवान के गले में पहना दी, देवताओं ने धुंधवियां बजाई और फूलों की वर्षा की, तब से ये सिद्ध हो गया कि भगवान सर्वथा निर्विकार सर्वथा निर्दुष्ट है, निर्दुष्ट है। देखो भगवान की परीक्षा हुई है, यहाँ परीक्षा कर करके भगवान को चुना है लक्ष्मी जी ने, यूं नहीं चुना है। अब उनके गले में माला पहना दी गई, सारे के सारे देवता ऋषि मुनि गंधर्व सब बड़े प्रसन्न हो गए। फिर मंथन किया तो वारुणी निकली, मदिरा निकली, मदिरा निकली तो फिर देवताओं ने तो उसको नहीं चाह, असुरों ने कहा ये मदिरा तो हमको दे दो कि तुम ले लो। इस प्रकार से मंथन करते 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 फिर एक दिव्य पुरुष निकला, कहते हैं बड़ा अच्छा वो पुरुष है, श्याम वर्ण वाला है, जवान है, माला उसने पहन रखी है, सर्वावरण सर्वाभरण भूषित है, सारे आभूषणों से वो विभूषित है, शंख के समान उसकी ग्रीवा है, कंठ है और अरुणेक्षण है, लाल लाल उनके नेत्र हैं, लंबी लंबी उनकी भुजा है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, सिंह के समान बड़े पराक्रमी हैं। ऐसा दिव्य पुरुष निकला और उनके हाथ में एक अमृत का कलशा है। सबकी दृष्टि के आहा, ये साक्षात भगवान विष्णु का अंश है। सबके मन में प्रसन्नता हुई, कहा अमृत निकल आया, अमृत निकल आया, अमृत निकल आया। मन का उल्लास उनका प्रकट होने लग गया। धन्वंतरी रीति ख्यात है, वे धन्वंतरी है, ऐसा सब लोग देखने लगे। इतने में ही कोई चालाक असुर थे, उन असुरों ने सबसे आंख बचा करके तत्काल उस कलशे को झपट लिया और अपने पास में रख लिया। जब छीन करके अपने पास में रख लिया तो दूसरे असुर उनके धक्का देने लगे, अरे भाई तुमने अकेले ने थोड़ी परिश्रम किया, अमृत हमको भी पिलाओ। ऐसे करके वे आपस में गुत्थम गुत्था होने लगे। देवता लोग बेचारे घबराए कि अब इनके पास कौन जाए, अमृत भी इनके पास में चला गया। अब अजित भगवान की शरण में गए कि महाराज करा कराया सारा काम बिगड़ गया, इससे तो अच्छा यही था कि अमृत निकलता है नहीं, कम से कम इनके हाथ में तो नहीं जाता। तो भगवान उस समय में देखे कि देवता लोगों का मुंह उतर गया है, बड़े दुखी हो गए हैं। तो भगवान ने आंख से इशारा करते हुए कहा कि चुप रहो, बोलो मत, अपने दुख को बताओ मत, सब काम ठीक हो जाएगा। ऐसा कह करके भगवान तो चुप हो गए। इतने में ही वो आपस में ही सारे के सारे लड़ने लग गए असुर अमृत को लेकर। किसी ने कहा कि अहम पूर्वम, मैं पहले लूंगा मैं पहले लूंगा, नत्वम नत्वम, ये तो लड़ाई होती है, मैं लूंगा तू नहीं लेगा, मैं लूंगा तू नहीं लेगा, ऐसे सब आप लड़ने लगे। किसी ने कहा अरे देवताओं ने भी प्रयत्न किया है, उनको भी ये भाग मिलना चाहिए। ऐसे वे आपस में लड़ रहे थे, इतने में ही भगवान एक बहुत सुंदर स्त्री बनकर के उनको दिखाई दिए सामने। भगवान तो भाई सर्वोपाय विदेश्वर है, सारे उपाय जानने वाले, कौन आदमी कैसे बस में होता है, इसकी नब्ज कैसे पकड़ में आएगी, इस बात को भगवान जानते थे। इसलिए वे असुर जिधर दृष्टि लगाए हुए थे वहीं सामने उनको भगवान ने दिखाई दिया, एक स्त्री के रूप में दर्शन दिया। अब इतना सुंदर स्वरूप बनाया उस स्त्री ने, भगवान तो यही सुंदर है, किसी भी रूप में जाओ फिर सुंदरता की भावना करके सुंदर बनेंगे तब तो और सुंदर बनेंगे। फिर वो भगवान सुंदरी वस्त्र पहनेंगे, सुंदरी आभूषण पहनेंगे और फिर मोहित करने के लिए वो चाल चलेंगे। तो क्या भगवान में भाई, भगवान से बड़ा तो कौन क्या हो सकता है। भगवान सत्य संकल्प है, भगवान यही चाहते थे कि हमसे मोह कर ले। तो वो बड़े अच्छे सुगंधी को लिए हुए, अच्छे अच्छे आभूषणों को पहने हुए और अच्छे वस्त्र पहने हुए भगवान स्त्री बने हुए वे उनको दिखाई दिए और उन्हीं की तरफ आने लगे। आप उनकी तरफ आने लगे तो उन लोगों की दृष्टि अमृत के कलशे पर तो रही नहीं और उस सामने दिखाई देने वाली स्त्री के ऊपर दृष्टि गई। ये कौन है भाई, कानाफूसी होने लगी, ये कौन है, ये कौन है। अयम रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम वय, देखो भाई छोटी तो अवस्था है और बड़ा दिव्य इसका रूप है, कौन है। तो चलो जाकर पूछ ले वे, तो थोड़े से तो वो बढ़े और थोड़े भगवान तो बढ़ ही रहे थे। अब वो भगवान उनके पास में आए तो ज्यों ही देवता ज्यों ही असुर और भगवान दोनों निकट आए तो असुर ने पूछा कि हे कमल नेत्री आप कौन है, आपका धाम कौन सा है। नहीं नहीं नहीं, अब देखो भगवान की भगवत्ता छिपी नहीं रहती हो, गंधर्वों में भी ऐसी सुंदरता नहीं है, सिद्धों में भी नहीं है, चारणों में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है, दैत्यों में भी नहीं है, मनुष्यों में भी नहीं है। नहीं नहीं तुम कोई और ही लोक से आई हुई हो, देखो ना तुम्हारी बराबरी तुम्हारी सुंदरता किसी के साथ नहीं हो सकती। अच्छा तुम जो भी हो तुम जानो, जरा हमारा एक काम कर दो ना। अब भगवान बोले बोलो क्या काम है। देखो इस एक वस्तु पर हम सब भाइयों की आपस में लड़ाई हो रही है, हम आपस में बड़ी मित्रता लेकर के तो यहां इसके अमृत के लिए प्रयत्न किए, प्रेम भाव से हमने अमृत को निकाला, अब स्वार्थ को लेकर हम सब लड़ने लग गए, तुम हमारा बैर दूर कर दो, ये अमृत का कलशा तुम रखो और तुम इसके ऊपर जैसा भी निर्णय करो वैसा कर दो। हम सब कश्यप जी के बेटा हैं और अमृत मंथन के लिए आए हैं, अमृत हमको मिल चुका है, ये हमारा परिचय, हमारी आपस में लड़ाई है, इस लड़ाई को आप मिटा दो। अब भगवान बोलने लगे, देखो विश्वास लेने के लिए भगवान कैसी सुंदर बात बोले। भगवान बोलने लगे अरे भाई आप कश्यप जी के बेटा हो, इतने ऊंचे ऋषि के बेटा होकर के और आप अमृत के लिए लड़ते हो, अमृत के लिए लड़ते हो ये आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मेरी जैसी चलती फिरती स्त्री पर आप इतना भरोसा करते हो। अरे हमको जानते नहीं, हम ऊपर से ही अच्छे लगते हैं, भीतर से हम अच्छे नहीं है, हम न जाने आपके साथ क्या पक्षपात करें फिर आपको बुरा लगे, इसलिए हम तो महाराज इसके बीच में आपकी पंचायती में पड़ते ही नहीं। अब देखो भगवान ने सारी बात कह दी, लोग कहते हैं भगवान ने धोखा दिया, बिल्कुल धोखा नहीं दिया, भगवान ने है जैसी बात कह दी। सख्या नाहुर अनित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वताम, हमारे साथ मित्रता करोगे तो धोखा खाओगे, क्योंकि हमारा कोई मित्र है ही नहीं, हम तो नए नए मित्रों की तलाश में चलते ही रहते हैं, हमारे साथ मित्रता तुम्हारी निभेगी नहीं। जब इस प्रकार से भगवान ने वचन कहे तो भगवान की वास्तविक गंभीरता को तो पहचाने नहीं और कह दिया कि नहीं बाबा, ये स्त्री ये अमृत का कलशा तुम रखो और हम आज वादा करते हैं कि आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, आप जो करोगे उसमें हमको मंजूर है, वो हम स्वीकार कर लेंगे। भगवान ने कहा देखो, आपकी लड़ाई मिटनी चाहिए, यदि मैं कुछ भी करूं, यद्यप उपेतम कुछ साथ वसाद हुआ, आपको ठीक लगे बेठीक लगे आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, यदि आप बीच में बोल दोगे तो हम इस पंचायती को छोड़ के भग जाएंगे यहां से। क्या नहीं बाबा, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप तो हमारा ये कलह दूर कर दीजिए। अच्छी बात है, अब वो अमृत का कलशा भगवान ने अपने हाथ में ले लिया, हाथ में लेके कहा देखो अमृत का कलशा है, पहले तुम स्नान करके आओ, समुद्र में स्नान करो, पवित्र हो, और फिर जो है दान करो, ब्राह्मणों को दान दो और यज्ञ करो, उसके बाद हमारे पास आओ, यूं अमृत नहीं मिलता है। झटपट सब नहाए धोए, पूजा पाठ किए, यज्ञ किया, ब्राह्मणों को दान वगैरह देने के बाद अब सब के सब कुशासन पर बैठ गए। कहते हैं वहां पर कुशासन पर बैठे तो फिर भगवान ने कहा देखो भाई, आप लोग कश्यप जी के बेटा हो लेकिन माँ आपकी अलग अलग है ना, तो ऐसा करो कि दिति की माँ एक तरफ बैठ जाए, दिति के बेटा एक तरफ बैठ जावे और अदिति के बेटा एक तरफ बैठ जाए। तो भगवान के तो कहने की बात ही सब उसी समय में चटाचट चटाटर एक के पास एक बैठ गए, दिति के बेटा एक तरफ अदिति के बेटा एक तरफ बैठ गए। जब ये सब बैठ गए तब भगवान अब उन दोनों के बीच में पधारे, वो अमृत का कलशा लेकर। ओहो, क्या भगवान की उस समय में चाल थी, क्या देखने का तरीका था और क्या सुंदर उन्होंने रूप बनाया था। संवीक्ष सम मुमुहुरु स्मित वीक्षण, भगवान के दर्शन करने मात्र से असुर तो मोहित हो गए कि ओहो कितना दिव्य रूप है इनका, कैसा इनका चलना है, कैसे बोलने का ढंग है। भगवान भी क्या किए कि देवताओं की तरफ तो देखे नहीं, असुरों की तरफ देखे और हंसे, और इधर देवताओं को अमृत पिलावे, फिर वो असुरों की तरफ देखे और फिर देवता को अमृत पिला दे, फिर असुरों की तरफ देखे रासे और फिर देवता को जल अमृत पिला दे, ऐसे करते करते एक एक के सामने जाए, हंसे चाल भाल तो उनको दिखावे और अमृत इनको पिलावे। ऐसा करते 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 देवताओं को अमृत पिलाना, पिलाते पिलाते बहुत बड़ी पंक्ति को पिला दिया तो कानाफूसी थोड़ी बहुत होने लगी। अरे भाई, हमारे सामने तो केवल लटका करके चले जाते हैं और अमृत तो वहां उड़ेल रहे, क्या करें। तो कहा बोलो मत नहीं तो ये अभी चली जाएगी यहां से। अरे आपको तो ये दिख रहा है, यदि ये चली गई तो ये इनके दर्शन भी नहीं होंगे, चुप रहो अब बोलो ही मत, अपने तो जबान दे रखी है। फिर भगवान उधर आवे, फिर देखे, फिर चले। ऐसे करते करते उन सारे देवतियों में एक ने देखा राहु ने कि अरे ये तो सब मूर्ख है, अपने को तो अपना काम बना लेना चाहिए। इतने में उधर देवताओं को पिलाते 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 अब सूर्य और चंद्रमा दो ही रह गए, इनके बीच में राहु आ गया और वो पिला करके इसको पिलावे, जितने में उसने अपना चलू कर लिया और वो अमृत का एक घूंट गया नहीं, इशारा कर दिया सूर्य ने चंद्रमा ने कि महाराज उधर से इधर आया है, उधर से इधर आया है, तो इसको भी इधर उधर करने का हमारे पास उपाय है। उसी समय में सुदर्शन चक्र लिया और उसके दो टुकड़े कर दिए और अंत में सूर्य को और चंद्रमा को अमृत पिला दिया और देखते देखते ही भगवान भी गायब, कलशा भी गायब, वो रूप भी गायब और देवताओं को अमृत पिला दिया। बेचारे असुर ठगे के ठगे रह गए। पीत प्राय अमृते देवई, अब देवताओं ने अमृत पी लिया, अब असुरों को अंगूठा दिखा दिखा के चिढ़ाने लगे कि अब पियोगे अमृत, अब लेओगे तुम कलशा, ले लो कलशा, पी लो अमृत। ऐसा जब कहना हुआ कि अब देव अब असुर के असुरों के मन में बड़ा क्रोध आया, अरे परीक्षित, यह है भगवान के शरण होने के फल कि यद युज्यते अशुभ अशु कर्म मनोवचोभिर देहात्मजादि सुनिर्भिस तदसत पृथक्त्वात्। मनुष्य प्राणों से शरीर से जो कर्म करता है वो असत होता है, लेकिन वही कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाता है तो वो सत हो जाता है। देवताओं ने एक भगवान की आस रखी तो भगवान ने उनकी आशा पूरी कर दी, और असुर है उन्होंने किसी की भी आशा नहीं रखी। सुरसुरों में तो कहा कि नहीं हम छोटे थोड़े ही है, तो उन्होंने जाकर के पूंछ नहीं पकड़ी और मुंह पकड़ने की बात सोची। और उधर हर बात में उन्होंने अपना अभिमान किया, इसका ये फल हुआ कि उनको अमृत नहीं मिला। अब दानव देते हुए अमृत मिले नहीं, अपने हाथ में शस्त्र ले लिए, कह दिए सब विष्णु की चालाकी है, विष्णु तो हमको दिखता नहीं, हम तुमको मारेंगे। देवता कहेंगे मार के करोगे क्या, हम तो अमृत पी चुके, मरेंगे नहीं तुमसे, तुम्हारे शस्त्रों से नहीं मरेंगे, अब भगवान के शस्त्र से भले ही मरे, यूं हम मरने वाले नहीं है। पश्चिताम सर्वभूतानाम ययो गरुड़ वाहन है, भगवान देखागा अब लड़ेंगे झगड़ेंगे, अपने को मतलब नहीं, अपने यहां से चलो, अभी लड़ाई हो आ जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। अब वहां बड़ा भयंकर समुद्र के किनारे देवासुर संग्राम हुआ, अपने अपने वाहनों में बैठ करके सब एक दूसरे से जा भिड़े, रथ से रथ भिड़ गए, ऊंटों से ऊंट भिड़ गए, हाथी से हाथी भिड़ गए, कहते हैं दो दो का द्वैरथ युद्ध होने लगा। विरोचन का बेटा बलि था, वो एक आकाश में इच्छानुसार चलने वाला जो विमान था उस पर बैठ गया और बहुत बाणों की वर्षा करने लगा। दूसरे भी असुर थे, वो अपने अपने हाथ में शस्त्र लिए हुए देवताओं पर टूट पड़े। ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र हैं, वो असुरों का संहार करने लगे। अंत में बलि और इंद्र ये दोनों आपस में लड़ने लगे, सूर्य और बलि का बेटा ये लड़ने लगे, दोनों की आपस में लड़ाई होने लगी। तरह तरह से वहां पर मायाएं फैलाई गई, बहुत से असुर मारे गए, लहूलुहान वो धरती हो गई। अंत में फिर असुरों ने जब बहुत बड़ी माया फैलाई, उस समय में सब असुर सब देवताओं ने भगवान को याद किया। भगवान को याद किया तो तत्काल भगवान गरुड़ पर बैठे हुए आठ भुजा से वहां पर अवतार लेकर के एकदम सारे उस युद्ध के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, जो ही भगवान वहां पर प्रकट हुए असुरों की सारी माया खत्म हो गई। और खत्म होने के बाद भगवान के सामने सुमाली आया, भगवान के सामने काल नेमी आया, पहले अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के भगवान की तरफ जोर से उसने वेग से फेंका, भगवान ने उस त्रिशूल को ले लिया लेकर के और वापिस काल नेमी की तरफ ही फेंका कि त्वदीयं वस्तु काल नेमे तुभ्यमेव समर्पये, तेरी वस्तु हम तुम्हें ही दे रहे हैं। उन्होंने काल नेमी की तरफ फेंका, अब काल नेमी वहीं पर पूरा हो गया। माली और सुमाली आए, भगवान ने अपने चक्र से उनके सिर उड़ा दिए और भगवान फिर अदृश्य हो गए। अब बलि आया इंद्र के सामने और इंद्र के सामने आकर के कहने लगा कि हे इंद्र, कौन हो तुम इतना अपना पराक्रम दिखाने वाले, हम आज हार रहे हैं, इसका अर्थ ये थोड़े ही कि हम दिल से हार गए हैं, हम बाहर की हार से आ रहे हैं, बाहर के युद्ध से आ रहे हैं, भीतर के युद्ध से नहीं आ रहे हैं। कि भीतर का युद्ध क्या होता है, भीतर का युद्ध होता है कि बाहर की हार से भीतर में शोक पैदा करना और बाहर के जीतने से भीतर में हर्ष पैदा करना, हर्षान्वित होना, ये भीतर की हार जीत होती है। तो तुम चाहे भाई कितनी विजय प्राप्त कर लो, भीतर में ही तुम्हारे हर्ष और शोक है तो हारे गए हो, और हम चाहे बाहर से कितना ही हार जाएं, भीतर में यदि हर्ष और शोक नहीं है तो हम जीते हुए हैं। अब बलि का और इंद्र का युद्ध हुआ। अब बलि के अब इंद्र के पास में तो वो वज्र था ही, दधीची ऋषि का हड्डियों से बना हुआ, जोर से उसके ऊपर प्रहार किया, वो तो वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गया, मृतप्राय हो गया। इधर मालूम चला जम्बादी को कि भाई हमारे महाराज बलि मारे गए हैं युद्ध में। बड़े क्रुद्ध होकर के वे आए, शूल लेकर के इंद्र के सामने आए, इंद्र ने अपने चक्र से उसको अभी सिर काट दिया। जम्ब की मृत्यु सुनकर के नमुची आए, बल आए, पाक आए और ये सब भगवान इंद्र से लड़ने लगे। इंद्र ने अपने बल ने अपने बाणों से इंद्र पर प्रहार किया, उसको भी मार दिया, इंद्र ने पाक को भी मार दिया। इन सब को मारने के बाद जब नमुची सामने आया, अब नमुची के ऊपर बहुत शस्त्रों का प्रहार किया और उस वज्र का भी प्रहार किया, लेकिन वो मरा नहीं। अब इंद्र घबराए कि भाई जिससे मैंने वृत्रासुर को मार दिया और बड़े बड़े दैत्यों को मार दिया, ये नमुची इस दधीची के हड्डी के अस्त्र से वज्र से ही नहीं मर रहा है तो कैसे मरेगा। इतने में आकाशवाणी हुई कि इंद्र देखो, हमने नमुची को वरदान दिया है, न तो ये सूखी चीज से मरेगा न गीली चीज से मरेगा, ऐसी कोई दूसरी चीज सोचो कि जो न सूखी हो न गीली हो। ओहो, सूखी भी नहीं और गीली भी नहीं, ऐसा तो केवल पानी का झाग है। समुद्र तो पास में था ही, झाग लिया और नमुची के ऊपर डाल दिया, उसी समय में नमुची का सिर उड़ गया। देवताओं ने दुंदुभियां बजा दी, फूलों की वर्षा कर दी। आप ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा और जाकर कह दो असुरों को, क्यों लड़ाई करते हो, देवताओं ने तो अमृत पी लिया है और इन असुरों को युद्ध से अलग कर दो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज आए और उन्होंने देवताओं को समझाया कि भाई आप लोगों ने अमृत पी लिया है, राज्य आपको मिल गया है, अब असुरों से क्यों लड़ाई करो। असुरों से कहा कि देखो तुम इनको जीत सकते नहीं, लड़ाई को बंद कर दो। अब वहां पर नारद जी के कहने से सब लड़ाई बंद हो गई। अब बलि तो एक तरह से मरी चुका था, लेकिन संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने उसको जिला दिया। जिला देने पर उनको अपनी स्मृति मालूम हो गई और उसके मन में कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि लोक तत्व विलक्षण है, विचक्षण है, वो लोक तत्व को जानने वाले हैं, अर्थात वो जानते हैं कि संसार में हार जीत होती रहती है, उसके मन में कोई खिन्नता नहीं हुई। इधर देवता लोग आकाश में कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये है वो है। शंकर भगवान ने देखा कि भाई, पूछा देवताओं से क्या बात है, भाई आजकल बहुत प्रसन्न हो रहे हो, बात क्या है? बात क्या है महाराज, हमने बहुत अच्छा अमृत पिया। अरे अरे आओ आओ आओ, बैठा बैठाओ। अच्छा बताओ, समुद्र मंथन में जहर निकला उसके बाद की क्या कथा है? कैसे ऐसे महाराज अमृत निकला था, फिर भगवान ऐसे मोहिनी रूप बना करके असुरों को मोहित किए, हमको अमृत पिला दिए। कि अच्छा, जहर निकला तब तो तुम सब हमारे पास आए, अमृत निकला तो तुम्हारे में से कोई नहीं आया, और तुमने इस अमृत को बड़ा अमृत मान लिया। सबसे बड़ा अमृत तो वो है जो भगवान का दिव्य रूप है, वो दिव्य रूप अमृत है, वो सबसे बड़ा अमृत है। पार्वती से कहा, पार्वती हम तुमको अमृत का दर्शन कराने के लिए आज भगवान के पास ले चलते हैं। अपने गणों से कहा, चलो भाई, हमारे सेवकों से भी कहा भगवान, अपने सेवकों से भी कहा भगवान शंकर ने, आओ हमारे साथ चलो, हम तुमको आज अमृत के दर्शन कराएंगे। लोग कहते हैं समुद्र में से अमृत निकला, अरे वो अमृत तो थोड़े समय का अमृत है, हम आपको और दिव्य अमृत है, भक्ति रस का जो अमृत है वो पिलाते हैं, आओ। कभी तो भक्ति रस है वो अपने अनुभव में आती है, हम आपको भक्ति रस है वो प्रकट में दिखाते हैं, चलो हमारे साथ जहां भगवान त्रिलोकीनाथ विराजमान है। अपने गणों के साथ, पार्वती के साथ भगवान शंकर विष्णु भगवान के पास आए। ध्यान देना हो अब कथा, ध्यान से सुनना। इस कथा में तरह तरह के भाव और कुभाव दोनों ही प्रकार के लोग पैदा करते हैं, लेकिन भागवत का जो सुभाव है, श्रेष्ठ भाव है, और सुखदेव जी महाराज के जो शब्द हैं उनके ऊपर अपने को विचार करना है। नारायण के वहां गए कि हे देवादिदेव, हे जगत व्यापिन, सर्वेशाम अपि भावानाम, सब प्राणियों के भाव आप ही हो, आदि अंत मध्य में आप ही हो। जैसे सोना है, सोने के गहने हैं उनमें भी सोना है, और गहनों को पिघला दोगे तब भी सोना है, और गहने नहीं थे तब भी सोना है, सृष्टि नहीं थी तब भी आप थे, सृष्टि है तब भी आप हो, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी आप रहोगे। आप शोक से रहित परम आनंद स्वरूप हैं, और एक ही है आप, अद्वय है, आपके अलावा आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। कार्य कारणात्मक जगत तो केवल हम लोगों को भ्रांति से प्रतीत होता है, जैसे माला में सर्प भ्रांति से प्रतीत होता है, ऐसे प्रतीत हो रहा है। लोगों ने तरह तरह से आपकी उपासना की, मीमांसकों ने तो ये बताया कि धर्म ही भगवान है, दूसरे लोगों ने बताया कि भाई नव शक्ति से युक्त है वो ही भगवान है। अब जो भी है सो तो आप हैं, आपका वास्तविक अनुभव सुनने से नहीं होता है, वास्तविक ज्ञान तो आपका अनुभव करने से होता है। मैं हूं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे दूसरे मरीचि आदि कोई क्यों न हो, असली रूप तो आपके जान ही नहीं सकते हैं। महाराज, चराचर प्राणियों के आप प्राण हो, मैंने आपके बहुत से अवतार देखे, बहुत से अवतार मैंने सुने, और बहुत से अवतारों में तो मैं आपके साथ ही था, परंतु मैंने सुना है कि आप समुद्र मंथन में अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप अवतार लिए थे, स्त्री रूप बने थे, और वो भी मोहित करने के लिए स्त्री बने थे। तो महाराज जरा हमको वो रूप दिखा दो जिस रूप से आपने असुरों को मोहित किया था और देवताओं को आपने अमृत पिलाया था। ऐसी जब सरलता से भरी हुई प्रार्थना भगवान ने सुनी शंकर की, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं हंसते हुए, भगवान विष्णु कहने लगे कि हे शंकर जी, ये तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में ऐसी खेल खेल में मैंने उनका मन लिया था, आप लोग तो परम ज्ञानी हो, आप परम महापुरुष हो, हमने देवताओं के कार्य के लिए ऐसा किया था, वह तो रूप यू ही हमने बना दिया था, ऐसे ही संकल्प में आया, यू बना दिया, यू बातें कर रहे थे, बातें करते 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 ऐसा लुभाया शंकर जी को, ऐसा लुभाया लुभाया एकदम सब गायब है, भगवान तो गायब है और उनकी ये स्मृति भी गायब होगी कि मैं विष्णु के सामने कोई प्रार्थना कर रहा था। इतने में देखा बहुत सुंदर बगीचा है, तरह तरह के वृक्ष वहां पर खिले हुए हैं और पार्वती जी साथ में थे ही और उनके पार्षद भी साथ में ही है। शंकर भगवान इधर उधर देखे तो एक बहुत सुंदर स्त्री उनको दिखाई दी, वो गेंद से खेल रही थी। जो ही वो स्त्री दिखाई दी, अब शंकर भगवान उसके पीछे पीछे दौड़े। देखो भगवान शंकर स्त्री के पीछे नहीं दौड़े, आप विचार करो कि आज भगवान शंकर मोहिनी रूप देखने के लिए पार्वती को लेकर आए हैं, गणों को लेकर के आए हैं, तो ये भगवान का एक विशेष रूप देखने के लिए आए थे और भगवान भी शंकर जी को अपनी और ज्यादा आकृष्ट करने के लिए ही रूप बनाए थे। शंकर भगवान ने देखा कि ओ बहुत ही दिव्य रूप है, आगे आगे तो भगवान और पीछे पीछे शंकर भगवान दौड़ रहे हैं। दौड़ते 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 सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि पार्वती के सामने ही वो दौड़ने लग गए, अपने गणों के सामने भी वो दौड़ने लग गए। गतर ही अब उनको कोई लज्जा नहीं आई कि मैं किन के पीछे दौड़ रहा हूं। यही वास्तव में भक्त होता है कि जिसके सारी मर्यादाएं सारी लज्जाएं पीछे रहती है और उसकी चित्त की वृत्ति एक एक भगवदाकाराकारिता होती है, तो गतर ही तत्पदम ये उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते भाई भगवान भी हर अवतार से सावधान करते हैं सबको। अब वो आगे आगे भगवान है, पीछे पीछे शंकर जी है। दौड़ते दौड़ते ऋषि मुनियों के आश्रमों के सामने से भगवान दौड़ते दौड़ते गए और पीछे पीछे शंकर जी दौड़ते गए। क्यों? ऋषियों को सावधान करने के लिए। भाई एकांत में बैठे हो, भजन कर रहे हो, लेकिन हमारी मायाओं से आप सावधान रहना। इस प्रकार से उनको सावधान करते हुए शंकर भगवान को अपना प्रेम रस देने के लिए दौड़ते गए। दौड़ते 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 बहुत दूर चले गए तो अब शंकर भगवान शक्ति से हीन हो गए। अब शंकर भगवान से अब आगे दौड़ा नहीं गया, जब शक्ति हीन हो गए, जितनी शक्ति थी वो शक्ति सब लगा दी, अब शक्ति रहित हो गए, तो वे जड़ के समान वहां पर खड़े हो गए। और जो ही वे वहां पर खड़े हो गए तो भगवान असली रूप में प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो भगवान विष्णु ने कहा कि शंकर जी आप जैसे भक्त मिलने वाले बड़े मुश्किल हैं। हमने स्त्री रूप से मैंने अपना रूप दिखाया है, लेकिन कामी पुरुष होगा वही मेरे हमारे इन रूपों में आकृष्ट होगा, आप जैसे धैर्यवान पुरुष इसमें आकृष्ट नहीं होंगे। लोग कहते हैं शंकर भगवान स्त्री के पीछे गए, भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम्हारी स्त्री में लेश मात्र भी आसक्ति नहीं है। दृष्ट्या तुम विबुध श्रेष्ठ है, स्वाम निष्ठाम आत्मना स्थित है, आप अपनी निष्ठा के अंदर कायम रहे। प्रेमी की भक्त की क्या निष्ठा है कि केवल भगवान से प्रेम करना, अपने छोटों के सामने भी, बराबर वालों के सामने भी और अपने प्रेमियों के सामने भी, अपने में श्रद्धा रखने वालों के सामने भी अपने श्रद्धे के पीछे हो जाना, ये बड़े भारी प्रेम की बात है। तो कौन में अति तरेद मायाम, अरे विषयाशक्त पुरुष है वो मेरी माया को नहीं जीत सकता है, और आपने मेरी माया को जीत लिया है। माया समेता कालेन काल रूपेण भागशः, इसलिए जो काल सबको ग्रस्त करता है वो काल आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। माया न त्वाम अभी भविष्यति, कोई भी माया आप पर नहीं डालेगी, इसलिए आप सर्वथा निश्चिंत रहो। इस प्रकार से भगवान ने ये बात कही, भगवान फिर अपने धाम में चले गए। शंकर भगवान ने फिर पार्वती जी से कहा, देखो पार्वती हमको रोज रोज तुम कहते हो कि तुम किसकी आराधना करते हो, किसकी आराधना करते हो, हम इनकी आराधना करते हैं कि जिनकी आराधना से हमारे सारे चित्त की वृत्तियां इन्हें में लीन हो जाती हैं। देखो पार्वती कैसे ये मायावी है, मैं कलाओं में श्रेष्ठ हूं लेकिन मेरा चित्त इन्होंने खींच लिया है, मैं इनके अधीन रहा करता हूं। इस प्रकार से शंकर भगवान वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये हमने तुमको भगवान के मोहिनी रूप की कथा सुनाई है। देखो परीक्षित ने प्रश्न किया था कि अमृत प्राप्ति के बाद और क्या कुछ हुआ, तो और यही हुआ। और क्या हुआ ये माने ये अनादिकाल की लीला है, मोहिनी अवतार की लीला, ये कोई सामान्य लीला नहीं थी। परीक्षित ने अपनी दृष्टि से ये बात पूछी नहीं कि शंकर भगवान ने क्यों देखना चाहा, इतने से ही सब बात आ गई कि और क्या हुआ में यही पूछने का आशय था, इसको परीक्षित जी को सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं कि असद विषय मंघ्रिम भावगम्यम प्रपन्नान अमृतम अमरवर्यान आशय सिंधु मध्यम कपट युवती वेशो मोहयन ये सुरारी तमाम उपसृता नाम काम पूरम न तोस्मी। दुष्ट व्यक्ति ऐसे परम दिव्याति दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर नहीं सकते हैं और शरणागत देवताओं को उन्होंने अमृत को प्रदान कर दिया था, जिन्होंने अमृत को प्रदान कर दिया था वे ही मोहित करने के लिए जो दिव्याति दिव्य मनोहर आकृति में ये युवती का रूप बनाकर मोहिनी का रूप बना करके प्रकट हुए थे, ऐसे मोहिनी भगवान के चरणारविंदों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये प्रणम्य अवतार हो, प्रणाम करने योग्य अवतार है। अब हम आपको छह मनवंतरों की बात बता दी, वर्तमान में सातवां मनवंतर चल रहा है और विवस्वान का बेटा श्राद्ध देव इस समय में मनु बना हुआ है और भगवान ने यहाँ वामन रूप से अवतार लिया है, तो वे भगवान वामन बनकर के बलि राजा के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं। ये सात मनवंतरों की कथा हो गई। आठवें में सावर्णी मनु होगा और भगवान सार्वभौम रूप से अवतार लेंगे। नौवें में दक्ष सावर्णी मनु होगा, तब भगवान ऋषभ रूप से अवतार लेंगे। दसवें में ब्रह्म सावर्णी मनु होगा, भगवान विश्वक्सेन होंगे। और दसवां और ग्यारहवां धर्म सावर्णी मनु होंगे, तब भगवान धर्म सेतु के रूप में अवतार लेंगे। बारहवें में रुद्र सावर्णी मनु होंगे, तो स्वधाम नाम से भगवान अवतार लेंगे। तेरहवें में देव सावर्णी, तो भगवान योगेश्वर बनेंगे। और चौदहवें में इंद्र सावर्णी होंगे, तो भगवान बृहद भानु होंगे। राजा पूछते हैं कि मनवंतरों में मनु, मनुपुत्र, देवता और इंद्र और भगवान के अवतार, इन सब का वास्तविक प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं देखो, जिस समय में सृष्टि चलती है तो प्रजाओं के ऊपर कोई न कोई शासन करने वाला होना चाहिए ना। शासन करेंगे तो अधार्मिक लोग अधर्म नहीं फैलाएंगे, इसलिए मनु होते हैं, वो शासन करने वाले हैं। अच्छा, शासन में भी सहायता देने वाले होने चाहिए, तो मनुपुत्र उनकी सहायता करते हैं। और प्रजा जो धर्म करती है उसका फल लेकर प्रजा को देने वाला कोई होना चाहिए, उसके लिए देवता होते हैं। देवताओं का इंद्र होता है और ऋषि भी होते हैं। ऋषि होते हैं जो प्रजा के अंदर लुप्त हुए ज्ञान को बार बार देते रहते हैं, और भगवान होते हैं वो सब प्रकार से सबका संचालन करते हैं, अवतार लेकर के प्रेमियों के सामने प्रकट होते हैं, यह इनका प्रयोजन है। परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि महाराज, वर्तमान में आप कह रहे हैं कि वामन भगवान है अवतार लिए हुए, तो वे वामन भगवान तो ये बलि राजा से याचना से ये राज्य क्यों लिया? आज तक जितने अवतार हुए उसमें वामन को छोड़कर के कहीं पर भी भगवान ने याचना से शासन नहीं लिया है। हिरणाक्ष को भी मारा है, हिरणकश्यप को भी मारा है, रावण को भी मारा है, कंसाजी को भी मारा है, परशुराम जी ने भी मारा है। आप बताइए, जितनी लीलाएं हुई है उस सब में मारा है, लेकिन ये वामन अवतार में भगवान ने मांगा है, ये क्या बात हुई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुमको कथा सुनाना चाहिए भाई, तुम कथा सुनने के परम अधिकारी हो। हमारी बात बात को बीच में पकड़ करके कथा में एक नया रंग ले आते हो, बड़ी अच्छी बात है। तो देखो, इधर देवताओं ने तो अमृत पी लिया, उन्होंने स्वर्ग असुरों से अब छीन लिया, वे स्वर्ग के शासक बन गए। तब बलि राजा ने अपने साथ के सारे दैत्यों को असुरों को ले जाकर भृगु जी को गुरु बनाया, शुक्राचार्य जी को गुरु बनाया, और गुरु बना करके कहा, महाराज कोई ऐसा यज्ञ करो कि हम देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। कि अच्छी बात है, अमृत पी लिया तो क्या हुआ? अमृत पीने का अर्थ यही है कि वो मरेंगे नहीं, परंतु शासन उनके पास रहेगा, ये बात थोड़ा ही है। आप चिंता मत करो, हम ऐसा यज्ञ करेंगे कि जिससे देवता लोग परास्त हो जाएंगे। ये अच्छी बात है। अब वहां पर एक ऐसा दिव्य यज्ञ किया गया, कहते हैं उस यज्ञ के अंदर स्वयं प्रह्लाद जी भी प्रकट हो गए थे, और उस यज्ञ के अंदर से बड़ा अच्छा रथ पैदा हुआ, बाण पैदा हुए और तरह तरह की शक्तियां पैदा हुई। उन सब को लेकर के राजा बलि इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। इंद्र ने देखा कि भाई गुरुजनों की शक्ति से इस समय में बलि के पास बहुत बड़ा बल आ गया है, उन्होंने अपना ये स्वर्ग लोक था वो छोड़ दिया और इधर उधर जाके छिप गए। छिप जाने के बाद अब बलि राजा स्वर्ग का शासन करने लग गया, पृथ्वी का भी शासन आ गया, स्वर्ग का भी आ गया, अंतरिक्ष का भी आ गया, त्रिलोकी का वो शासक हो गया। अब देवता लोग गुरु जी के पास गए, बृहस्पति जी के पास में गए कि महाराज कोई उपाय बताओ, हम लोग तो अब असुरों के द्वारा पराजित हो गए। गुरु जी ने कहा कि देखो, कभी कभी असुर जीतते हैं और कभी तुम लोग जीतते हो, इसमें भगवान की मर्जी चलती है। अब थोड़ी दिन प्रतीक्षा करो, तुम स्वर्ग को छोड़ दो और इधर उधर छिपे छिपे अपना दिन निकालो, भगवान के ऊपर तुम भरोसा रखो, भगवान अपने आप सब कृपा करेंगे। अभी तो भाई शुक्राचार्य जी के कृपा के प्रभाव से असुरों का बढ़ने का समय आया है, तुम्हारा समय आएगा फिर हम संभाल लेंगे। इधर देवताओं की माता अदिति ने विचार किया कि ओहो, हमारे लड़कों को बलि राजा ने असुरों के साथ में मिलकर के स्वर्ग से धकेल दिया है। तब उसने अपने पतिदेव की बहुत सेवा की, पतिदेव बैठे हुए थे तपस्या में, उनकी बहुत सेवा की। सेवा करने के बाद जब उनकी तपस्या की अवधि पूरी हो गई, तब कश्यप जी ने कहा, क्यों भाई अदिति जी, क्या बात है, आपका मुख बड़ा म्लान है, बड़े आप दुखी हो, बात क्या है? भाई घर गृहस्थी को दुखी दो तीन बातों से होता है, या तो कोई घर गृहस्थ में अतिथि बनकर आया उसकी सेवा नहीं की, या कोई आपने अग्नि आदि से यज्ञ नहीं किया, अग्नि की पूजा नहीं की, अतिथि की सेवा नहीं की, या कुटुंब में बहुत ज्यादा आसक्त हो गए, और तो कोई आपका कोई कारण नहीं है, आप क्यों इतने दुखी हैं? अदिति ने कहा कि देखिए, आपके आश्रम में अधर्म कभी आ ही नहीं सकता है, इसलिए अग्नियों की भी आहुतियां हुई है, अतिथियों की भी सेवा हुई है, भिक्षुओं को भिक्षा भी मिली है, सब काम ठीक किए हैं, लेकिन बस एक बात का खटका है कि आपके ही बेटा है जो देवता के नाम से प्रसिद्ध है, जो आदित्य कहलाते हैं, ये स्वर्ग से धकेल दिए गए, आप कृपा करो ऐसी कि जिससे वापिस उनको स्वर्ग मिल जाए। कश्यप जी ने कहा कि ओहो, देखो अदिति, इसी को ही कहते हैं भगवान की माया, कौन किसका बेटा, कौन किसकी माँ, कौन किसका बाप, लोग यूं ही मिथ्या ही संसार में उलझ गए, अपने अपने मन के बनावटी फंदे में ऐसे जकड़ गए, ऐसे जकड़ गए कि उससे ऊपर उठने की बात उनको नहीं सुहाती। मोह एक ही कारणम, एकमात्र संसार में फंसने का कारण केवल मोह है, इसलिए भाई मोह को हटाओ। अदिति ने कहा कि महाराज, मोह को तो बाद में हटाएंगे, पहले आप देवलोक से असुरों को हटाओ, उसके बाद हम मोह हटाने की बात करेंगे। अच्छी बात है, भगवान की आराधना करो भाई, हम तुमको एक उपाय बता देते हैं, 12 दिन का तुमको ये उपाय करना है। देखो दिति को तो बताया 12 महीने का और यहां बताया 12 दिन का। अब कोई पूछ सकता है कि भाई कश्यप जी ने ये भेद क्यों किया, एक को तो 12 दिन के लिए कहा और एक को 12 महीने के लिए कहा। तो देखो, कभी कभी पढ़ाई में हम देखते हैं कि गुरु जी किसी पाठ को याद करने के लिए बोलते हैं, एक छात्र को कहते हैं तू इसको 100 बार, इस श्लोक को 100 बार बोल करके आ, एक को कहते हैं तू 10 बार बोल करके आ, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी बुद्धि इतनी ठस है, इतनी ठस है कि 100 बार याद, 100 बार बोलेगा तभी ये याद कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और दूसरे के लिए कहा कि ये ऐसा है कि 10 बार में याद कर लेगा। तो जितना मलिन हृदय अदिति का है, ऐसा मलिन हृदय अदिति का नहीं है। अदिति यही चाहती है कि मेरे बेटे स्वर्ग में रहे, और दिति चाहती थी कि मेरा बेटा इंद्र को मारने वाला हो। तो जिसके मन में मारने की वृत्ति पड़ी है, उसके मन को सुधारने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए उसको तो 12 महीने का अनुष्ठान बताया। और अदिति ने कहा कि हमारे पुत्रों को स्वर्ग मिलना चाहिए, ये नहीं कहा कि असुरों को मार देना चाहिए, दैत्यों को मार देना चाहिए, ये नहीं कहा, इसलिए कहा कि हम आपको 12 दिन का अनुष्ठान बताते हैं। ये पयोव्रत अनुष्ठान है, केवल दूध पीकर के ही किया जाता है। ये फाल्गुन शुक्ला एकम से लेकर फाल्गुन शुक्ला द्वादशी तक, फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक 12 दिन का यह अनुष्ठान है। कहते हैं अमावस्या के दिन सुअर से खोदी हुई पृथ्वी की मिट्टी लेकर के उसे स्नान करें, और फिर पृथ्वी की पूजा करें, और फिर पृथ्वी की पूजा करके फिर भगवान की पूजा करें, सूर्य की पूजा करें, जल की पूजा करें, भगवान को प्रणाम करते हुए कि महाराज आप प्रधान है, पुरुष है, संपूर्ण प्राणियों में आप निवास किए हुए हैं, 24 तत्वों से आप सबको बनाए हैं, संपूर्ण विद्याओं के अधिपति हैं, आप शिव रूप है, रुद्र रूप भी आप हैं, योगेश्वरों का शरीर वो आप ही का है, कितना दिव्य आपका रूप है, हे केशव आप हमारे मनोरथ को पूरा करो। इन मंत्रों के द्वारा ऋषिकेश की स्तुति करें। और उसके बाद उनके सामने द्वादशाक्षर विद्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इससे उनका पूजन किया जाए और उनके सामने तरह तरह की वस्तु उपस्थित रखे, 108 बार उनके मंत्र का जाप करें, पर प्रदक्षिणा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन करावे, 12 दिन तक ऐसा अनुष्ठान करें। भगवान की इसमें आराधना होती रहनी चाहिए, दुष्टों से बात नहीं करें, कभी कोई भोगान उच्चा बचांस तथा भोगों की इच्छा न रखे, भगवान वासुदेव के परायण रहे। 13वें दिन इस व्रत का बड़े उत्सव के साथ में उद्यापन कर देवे और आचार्य को वस्त्रों से आभूषण से गाय से प्रसन्न कर देवे और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद भी प्रयोव्रत का यहाँ पर उद्यापन कर देना चाहिए। ये प्रयोव्रत नाम का अनुष्ठान है। हे अदिति, हमको पितामह ब्रह्मा ने बताया था और वो ही धीरे धीरे अब लुप्त हो रहा है, वो हमने तुमको बता दिया है, इससे तुम्हारी सब प्रकार से सिद्धि हो जाएगी। भगवान परितुष्टस्ते, भगवान तुम्हारे पर प्रसन्न होकर तुमको बहुत अच्छा फल देंगे। अदिति ने 12 दिन का अनुष्ठान था खूब अच्छे ढंग से पूरा कर लिया। भगवान वासुदेव का ही चिंतन करती थी, भगवान के स्वरूप का चिंतन करती थी और बड़े सात्विक भाव से रहती थी। एकाग्र मन से अखिल भगवान में उन्होंने अपना मन लगाया और चचार है पयोव्रतम, पयोव्रत का पालन किया। ऐसा जब भगवान में मन लगाया तो अदिति के हृदय में भगवान चतुर्बाहु रूप से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए उनके सामने प्रकट हो गए। पहले तो हृदय में प्रकट हो गए, उसके बाद बाहर प्रकट हो गए। जब भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हुए हैं अदिति के सामने, अदिति ने उनको प्रणाम किया और भगवान से स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आप यज्ञों के स्वामी हैं, हे यज्ञ पुरुष, आपके चरण है वो तीर्थ है, आपका सुनना है वो सबका मंगल कर देने वाला है, शरणागत के पापों को आप दूर करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति स्थिति के आप कारण हैं, आप अपनी महिमा में पूर्ण हैं, आप अपने ज्ञान में परिपूर्ण हैं, आयु है शरीर है ये सब आपका बड़ा दिव्य है, मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहती, आपके मिल जाने के बाद सब कुछ मिल जाता है। हे अनंत, आप मिल गए तो अनंत चीजें क्या, आपका रूप मिल गया तो और चाहिए क्या, फिर अपने अपने सौतों के पुत्रों के ऊपर हमारे पुत्र विजय प्राप्त करें, ये इच्छा रखना कोई खास अर्थ नहीं रखता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान कहने लगे, अदिति जो तुम चाहती हो वो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है, उस समय में असुरों की अभिवृद्धि होती है और देवता लोग अपने पराक्रम से बेचारे च्युत हो जाते हैं, इस समय में स्वर्ग में रहने का समय नहीं है देवताओं के लिए, तो असुरों का बल बहुत बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा उपाय जरूर किया जाएगा, तुम किसी प्रकार से चिंता मत करो, तुम्हारी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर के जन्म लूंगा और तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा, लेकिन एक बात है, स्त्रियों के यहाँ कोई बात गोपनीय नहीं रहती है, मैं तुमसे ये बात कहता हूँ कि किसी से भी ये बात कहनी नहीं, किसी से भी यही नहीं कहना, पृष्ठ या भी पूछे तो भी ये बात मत कहना कि मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लेने वाला हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान इतना कहकर के अंतरित हो गए। थोड़े दिनों के बाद अब भगवान है अदिति के गर्भ में आए, ब्रह्मा आदि को बड़ी प्रसन्नता हुई, वे अदिति के पास आए और गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप त्रिगुण हैं और त्रिगुणों से अतीत हैं, आप आदि अंत रहित वाले और आदि अंत वाले भी आप हैं, संसार में आदि भी आप, अंत में भी आप, मध्य में भी आप, इन सब से निरपेक्ष भी आप, जो कुछ दिखता है वो भी आप, कालो भवाना क्षिपति सविष्णम स्रोतो यथांत पतितं गभीरम, जिस प्रकार से जल का प्रवाह तृणादि को बहा ले जाता है ऐसे आप काल रूप से सबको बहा ले जा रहे हैं, अब आप प्रजा का कल्याण करेंगे, बड़ी कृपा करेंगे महाराज, अब आप इस अवतार के द्वारा सारे संसार को शांति प्रदान करेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की स्तुति सुनी भगवान ने, सुनते ही सबसे पहले भगवान अदिति के सामने फिर चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान, पीला वस्त्र पहने हुए हैं और उनके कुंडल है मकराकृति कुंडल, उनके कपोलों के ऊपर जगमगा रहे हैं, श्रीवत्स का चिन्ह वक्षस्थल पर है और अंगद माने भुजाओं के आभूषण उनके बड़े सुशोभित हो रहे हैं, वनमाला बड़ी सुंदर है और प्रजापति कश्यप जी के घर को उन्होंने अपने कांति से जगमगा दिया है, सारे दिशाओं में प्रसन्नता छा गई है। अंतरिक्ष में, आकाश में, पृथ्वी पर, दिशाओं में, सब जगह श्रेष्ठ प्राणियों के मन में स्वाभाविक ही उल्लास पैदा हो गया है। भाद्रपद शुक्ला द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में भगवान वराह का आविर्भाव हुआ है। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई है, फूलों की वर्षा की है, सब बड़े प्रसन्न हो गए, सबके मन में बड़ा उल्लास आया। त्रिलोकनाथ भगवान अवतार लिए हैं, दीदी के आदित्य के मन में इतनी प्रसन्नता हो गई है, भगवान हमारे यहाँ अवतार लिए हैं। उस समय में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चार भुजा से थे और देखते देखते भगवान उनके सामने छोटे वामन रूप से प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। अब जो ही वामन भगवान से वहां प्रकट, वामन रूप से भगवान प्रकट हुए, मोद माना महर्षय, सब जगह खबर तो फैली गई। ऋषि मुनि सब बड़े प्रसन्न हुए। सबसे पहले सविता सूर्य आए और सूर्य आकर के उन्होंने उनको सावित्री दी, बृहस्पति ने उनको ब्रह्मसूत्र दिया, कश्यप जी ने उनको मेखला दे दी, भूमि ने उनको काले मृग का चर्म दिया और चंद्रमा ने उनको एक डंडा दे दिया, माता ने उनको कौपीन दे दी और कमंडलू ब्रह्मा जी ने दे दिया, सप्तर्षियों ने उनको कुशाएं दे दी, सरस्वती ने उनको रुद्राक्ष की माला दे दी और कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दे दिया, उमा ने उनको भिक्षा दे दी। इस प्रकार से वे एक बहुत अच्छे ब्राह्मण के रूप में वहां पर सबसे लेकर के तरह तरह की वस्तुएं लेकर के और बहुत ही आनंदित कर रहे हैं सबको। सह ब्रह्म वर्ष से नैवम सभाम संभावितो वटुहु, सबको उन्होंने आनंदित किया। ये सामान्य सभा नहीं थी, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि इसके अंदर विराजमान थे। ऐसी सभा को आनंदित करने के बाद सब अपने अपने स्थल पर चले गए। अब आगे जब वामन भगवान ने सुना कि बलि राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो वे उस यज्ञ के अंदर शामिल होने के लिए अपने कश्यप जी की कुटिया से रवाना होते हैं। मन में विचार किया कि आज हम बलि के यहां जाएंगे। अब वे वहां से रवाना हुए तो ये नर्मदा नदी के किनारे का क्षेत्र है, वहां पर वे पधारे। नर्मदायास तटे उत्तरे, नर्मदा नदी के उत्तर तट के ऊपर एक विशाल यज्ञ मंडप बना हुआ है। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोग आए हुए हैं। भृगुकच्छ संज्ञा किस स्थान पर बड़े बड़े ऋत्विज लोग हैं, वो साहस स्वधा का उच्चारण कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और भगवान छत्ता लिए हुए, डंडा लिए हुए, पोथी लिए हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, जनेऊ पहने हुए, कौपीन पहने हुए और अपने हाथ में कमंडुली लिए हुए, आहा बहुत ठुमक ठुमक करके धीरे धीरे वे उस यज्ञ मंडप की ओर बढ़ रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उधर वो ऋत्विक लोग आहुतियां दे रहे हैं मंत्रों की। इतने में उन सब की दृष्टि सामने आते हुए एक छोटे से बालक पर पड़ी। सब ने एक दूसरे कहा, वो कौन आ रहे हैं? सूर्य किलाया त्युतवा विभावसु, सूर्य आ रहे हैं कि अग्नि आ रहे हैं कि सनत कुमार आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं जरा देखो तो सही। सब देख रहे हैं एक दृष्टि से, आप मंत्र मंत्र सब उनके कहीं चले गए और वामन भगवान को देखने लग गए और वे अपनी चाल से बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। बढ़ते 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 ठीक वे यज्ञ मंडप के किनारे आ गए हैं। देखा कि भाई जटा इन्होंने धारण कर रखी है और बड़ा सुंदर इनका रूप है। सारे के सारे ब्राह्मण अपने आसन से खड़े हो गए, यजमान बलि भी अपने आसन से खड़े हो गए। यजमान ने देखा कि आज तक मैंने बहुत पुरुषों से भेंट की है और भी ऊपर लोकों में मैं गया हूं, इतना सुंदर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। यजमान भूल गए कि मैं किन को देख रहा हूं, एक भगवान के स्वरूप को देखकर निर्मिमेश दृष्टि से देखते देखते वहां अटक गया। फिर वो आगे बढ़ा, आगे बढ़कर के जहां भगवान खड़े थे वामन भगवान, वहां पर पहुंचा और एक सोने के पात्र में जल ले जाकर उनके चरण धुआए। चरण धोने के बाद तत्पाद शोचम जन कल्म शापहम, ये सामान्य जल नहीं था, सारे संसार के मल को धो देने वाला अत्यंत पवित्र जल था। उस जल को बलि ने लिया और बलि ने लेकर के अपने सिर पर रखा और फिर उनको अंदर ले जाकर एक बहुत अच्छे आसन पर उनको बैठाया, ऊंचे आसन पर। आसन पर बैठा करके उनको प्रणाम करके और बलि ने बड़ी नम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, आपका इस सभा के अंदर, इस मंडप के अंदर बारंबार स्वागत है। आप ब्रह्मर्षियों की तपस्या हो अथवा आप हमारे कोई पुण्यों के स्वरूप में यहां पधारे हो, ये तो आप ही जाने। मैं इतनी बात जानता हूं कि आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मैं इतनी बात जानता हूं कि आज मेरा सारा कुल पवित्र हो गया, और मैं ये जानता हूं कि आज मेरे यज्ञ का अनुष्ठान भी पूरा हो गया। इतने पवित्र ब्राह्मण आप यहां आए हो, देखो हमारी अग्नियां कितनी प्रसन्नता से आहुति के अंदर जगमगा रही है, इन अग्नियों में भी बड़ी शांति है, आपके यहां पधारने से सब जगह शांति शांति छा गई है। मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि अब मेरे मन में कोई पाप नहीं है, मैं सर्वथा निष्पाप हो गया हूं आपके चरणों का दर्शन करने के कारण। अच्छा, इस यज्ञ के अंदर आप कुछ न कुछ मांगने के लिए ही तो आए हैं, आज आप दिल खोल करके मांगिए और मैं भी आपको आज दिल खोल करके दूंगा। मांगने में आप कमी मत रखना और देने में मैं कमी नहीं रखूंगा। आज आपको महाराज आपकी भी इज्जत रखनी है और मेरी भी इज्जत रखनी है। सोना मांगो आप, पृथ्वी मांगो आप, कोई राज्य मांगो और कोई आप हाथी घोड़े रथ जो मांगो, जो मांगो सो मैं आप देने के लिए तैयार हूं। अब वो भगवान धीरे से मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए भगवान कहने लगे, अब ध्यान से सुनना हो भगवान की बात, देखो भाई आपकी और कहीं दृष्टि नहीं जावे, घड़ी वड़ी पर दृष्टि नहीं जावे, कथा पर दृष्टि जावे, बहुत सुंदर कथा है। भगवान कहने लगे कि वतस्तवैता जनदेव सुनितम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यस्य प्रमाणम भृगव सांपराये पितामह कुलवृद्ध प्रशांत है। बहुत अच्छे वचन कहे हो हे बलिराजन, ये तुम्हारे कुल के अनुरूप है, धर्म से युक्त है, यश को बढ़ाने वाला है। क्यों नहीं कहोगे ऐसे वचन? क्योंकि तुम्हारे यहां साक्षात शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ करवा रहे हैं, उनके आप शिष्य बने हुए हो। तुम्हारे कुल में आज तक ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ कि जो देने के नाम पर मुंह छिपा करके कहीं लेने वाले के सामने से छिप गया हो, ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ। देखो दो व्यक्ति बड़े बहादुर बड़े बड़े प्रयत्न से मिला करते हैं, एक तो वो कि जो युद्ध भूमि में ललकार सुनने पर आकर खड़े हो जाए, प्राणों को न्योछावर कर दे, और एक उचित पात्र के उपस्थित होने पर अपना सर्वस्व दे डाले, ऐसे दो पुरुषों की मैं बहुत कमी देखा करता हूं। लेकिन तुम्हारे कुल में ये बात नहीं है। क्यों होगी? कि तुम्हारे कुल के अंदर प्रह्लाद पैदा हुए हैं। मुझे वो दिन याद है जिस दिन हिरणाक्ष का वध हुआ और हिरणाक्ष के वध के बाद तुम्हारे ही वंश में हिरणकश्यप हुए। वे हिरणकश्यप विष्णु को जीतने के लिए एक लोक से दूसरे लोक पर, दूसरे लोक से तीसरे लोक पर चक्कर लगाते रहे, ऊपर नीचे सब जगह। लेकिन बेचारा वो विष्णु भी हिरणकश्यप से डरा फिरा, इधर उधर छिपता रहा, कहीं उसको जगह नहीं मिली कि वो हिरणकश्यप से छिप करके कहीं रह जाए। तब वो विष्णु बड़ा दुखी होकर सोचे कहां जाऊं कहां जाऊं, तो वो बहुत छोटा रूप बन के, ये तो तुम जानते हो विष्णु बड़ा मायावी है, वो छोटा सा रूप बन करके और कहीं जगह नहीं मिली तो उसके श्वास के साथ नाक मार्ग से जाकर हिरणकश्यप के हृदय में जाकर बैठ गया। हिरणकश्यप को पता ही नहीं चला कि मेरे हृदय में विष्णु है। ततो हमस्य, उस हिरणकश्यप के वंश में तुम पैदा हुए हो, हिरणकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन और विरोचन के तुम, कितना पवित्र तुम्हारा ये वंश है। श्वासा लीलांतर हितभू सूक्ष्म देह तत्प्राण रंध्रेण विविघ्न चेता। तो उसके बाद हिरणकश्यप इधर उधर बहुत जगह भटका, तब हिरणकश्यप को वो विष्णु मिला नहीं। देखो विष्णु ही बोल रहे हो, अपनी पोल खोल रहे हैं, सोचना चाहिए था कि ये कौन है। अरे विष्णु की ऐसी छिपी हुई बात क्या विष्णु के बिना कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। देख रहा है ये तो ब्राह्मण, अरे उस हिरणकश्यप ने देखा कि भाई विष्णु कहीं मर गया है मेरे डर के कारण, अब मर जाने के बाद किसी के साथ बैर नहीं रखना चाहिए, तो हिरणकश्यप उदास हो गया। उसके बाद तुम्हारे दादा हुए प्रहलाद जी, वो कोई कम थोड़े ही हुए। अरे हमने सुना कि वो तो विष्णु का परम भक्त था, विष्णु ने उसको न जाने कितने वरदान दे रखे थे। दूसरे शब्दों में हम कहें कि विष्णु की और प्रहलाद की आपस में क्या बातें क्या संधियां हुई, वो तो वो दोनों ही जान सकते हैं। रहे तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता तो भाई ब्राह्मणों के बड़े भक्त रहे हैं, और तुमने देखो कितना अच्छा यज्ञ किया है, तुम्हारी वंश परंपरा को देखता हूं तो मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न होता है। मैं तो इस यज्ञ में यूं ही चलते आ गया, ऐसा है तुम्हारा यज्ञ भी पवित्र हो जाए, हमारा भी काम बन जाए। हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हम केवल 3 चरण पृथ्वी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। भगवान ऐसा कहकर के चुप हो गए। अब वो बलि सुनता है कि अरे ये कैसा ब्राह्मण बालक आया काया भाई। कहने लगे अरे ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण बालक, वचन तो तुम बोले ऐसे जैसे कोई बड़े बूढ़े ने बोला करते हैं, वैसा तुम बोले हो, और जब मांगने की बात आई तब तुम केवल 3 जमीन पृथ्वी मांगते हो। भरी सभा में मेरी क्या इज्जत रहेगी, 3 जमीन 3 पग पृथ्वी दी इनको। तस्माद वृत्ति करीम, भूमि इतनी ले हो जिससे आपकी आजीविका चल जाए, आपकी रोटी पूरी बन जाए, इतनी जमीन ले हो तुम। भगवान कहने लगे कि राजन, संसार के जितने विषय हैं ये सारे के सारे विषय मिलकर के किसी एक आदमी को मिल जाए और उस आदमी की इंद्रियां बस में नहीं हो तो ये सारे विषय मिलकर के भी उसको सुखी नहीं बना सकते। यदि मैं 3 कदम से संतुष्ट नहीं हूं तो मैं त्रिलोकी से भी संतुष्ट नहीं हो सकता हूं, और यदि मैं 3 कदम से संतुष्ट हूं तो 3 अंगुल की भी जमीन मिलेगी उसमें भी संतुष्ट हो सकता हूं। 7 द्वीप का आधिपत्य भी मिल गया वेन आदि को तो अभी कौन से वो संतुष्ट हो गए। राजन, तृष्णा का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं की कोई पूर्ति नहीं हुई है, आज तक ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं हुआ, इच्छा की और पूर्ति हो गई, सुख मिल गया, इच्छाओं से कोई सुख नहीं मिला है, इसलिए जितना मिल जाए उसमें हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए रहो, इसी से ही सबका तेज बढ़ेगा। ब्राह्मण का तेज तो संतोष से बढ़ता है। केवल 3 पैर जमीन चाहता हूं राजन, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मेरा प्रयोजन इसमें सिद्ध हो जाएगा। शुक्राचार्य जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वे ऐसी बात कही तो वो हंसने लग गया कि अच्छी बात है भाई, तुम्हारी यदि ऐसी इच्छा है तो हम ऐसा ही देने के लिए तैयार है। इतने में ही अपने पास में पात्र था, वो पात्र से अपने हाथ में देने की प्रतिज्ञा करने लगा, एक आवाज आई, ठहरो राजन, ठहरो ठहरो ठहरो। राजा ने देखा कौन है, ये तो शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं। फरमाइए गुरु महाराज, अरे 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 ठहरो, तुम नहीं जानते, तुम कर्मकांड में फंसे हो, नहीं जानते, मैं जानता हूं इसको, ये जितना छोटा है उतना ही मोटा है, ये उतना ही मोटा है, जितना छोटा दिखता है ये बहुत बड़ा है, ये साक्षात विष्णु है, ये कश्यप जी के यहां अवतार लेकर के आया है और देवताओं को ये राज्य देने के लिए आया है। तुमको इस बात का मालूम नहीं कि प्रतिज्ञा करके किस महान अनर्थ के अंदर तुम चले जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूं कि इसके सामने प्रतिज्ञा मत करो। इसको पूज लिया, नमस्कार कर दिया और कह दिया, अच्छा महाराज हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा करके इसको विदा कर दो, इसी में जीत है, नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। बलि, राजन हमारा किया कराया सब बेकार हो जाएगा। इसके 3 चरण कितने बड़े हैं, बहुत बड़े हैं राजा, सुन लो तुम, 1 पैर से तो सारी पृथ्वी नाप लेगा और शरीर से ये बहुत ऊंचा चला जाएगा और स्वर्ग लोक में ले जाकर दूसरा पैर रखेगा और फिर वहां बढ़ेगा तो आगे जाकर के और इतना बढ़ जाएगा कि सारा ब्रह्मांड नाप लेगा, तीसरा पैर रखने की कोई जगह नहीं होगी, तब तीसरे पैर के लिए तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तो नरकों में जाना पड़ेगा। ऐसे दान की कभी भी शास्त्रों में महिमा नहीं आई है कि जिस दान के बाद हम लोग संकट में पड़ जाएं। दान उतनी वस्तुओं का देना चाहिए कि माने अपने धन में से धर्म का विभाग करो, यश का विभाग करो, अर्थ का विभाग करो, काम का विभाग करो, स्वजनों को कितना देना चाहिए उसका विभाग करो। इस प्रकार से सब प्रकार का विभाग करने के बाद सोच समझ के जो दिया जाता है वो दान श्रेष्ठ होता है। सत्यम पुष्प फलम विद्या, हाँ ये जो शरीर है ये धर्म करने वाला है, शरीर रहेगा तब तक धर्म होगा और यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर धर्म कैसे करोगे भाई, और शरीर ही संकट में पड़ जाए फिर कहेंगे साहब हमने धर्म कर लिया शरीर को संकट में डालकर, ऐसे दान की हम प्रशंसा नहीं करते हैं। स्वीकार करना ये सत्य है और स्वीकार नहीं करना ये झूठ है, और कभी कभी मनुष्य को ना भी करनी पड़ती है, सब जगह हां भी नहीं कर सकते और सब जगह ना भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर झूठ भी चलता है, स्त्रियों के प्रेम में झूठ चलता है, और वृत्यर्थे जाना हमारी आजीविका में कोई बाधा पड़ जाए तो झूठ चल सकता है, प्राण संकट में पड़ जाए तो झूठ चल सकता है, गाय का हित और ब्राह्मण का हित हो तो झूठ चल सकता है, हिंसा से किसी को बचाना हो तो झूठ चल सकता है। यहाँ झूठ है, वो झूठ की निंदा नहीं की गई है, इसलिए तुम कह दो कि हम तो आपको नहीं देंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप इसको यूं ही जाने दो, आप इसके चक्कर में मत पड़ो। ये बात सुनकर के राजा बलि ने कहा, वाह गुरु महाराज, आप मेरा कितना हित चाहते हैं, विष्णु की नाराजगी लेकर के भी आप यजमान का हित चाहते हैं, इससे बड़ा मैं आपको और क्या अपना हितेशी मान सकता हूं, परंतु देखो आप, मैंने हां भर दी है, प्रतिगृहताम कह दिया कि आपकी मर्जी है उतना ले लो, आप जो दोगे सो लूंगा, ऐसा मैंने हां भर दी है। अब हां भरने का जो पाप है और उस हां भरने के बाद जो नहीं दूंगा उसका जो पाप है, उसका कभी आपने विचार किया है? मैं सब कुछ सह सकता हूं गुरुवर, लेकिन अपने मुंह से हां कहने के बाद मैं ना नहीं कह सकता हूं। मुझे आप नरकों का डर मत दिखाइए, मैं नरकों से नहीं डरता हूं, और मैं किसी और दंड से नहीं डरता हूं। एक ब्राह्मण के सामने हां भर करके ना करने में जो मुझे चोट पहुंचती है, ऐसी चोट और किसी भी दंड से मुझे नहीं मिलती है। दधीची ऋषि ने अपने अस्थि दे दी, शिवि ने अपने प्राण दे दिए, ऐसे समय में उन लोगों ने भी इतना इतना कष्ट सहा है, क्या मैं थोड़ा सा कष्ट नहीं सह लूंगा? लक्ष्मी के बिना, राज्य के बिना, हमारे पास पहले कहां राज्य था? शरीर नहीं रहेगा तो कहां राज्य रहेगा? लेकिन मेरी जवान को मैं खराब नहीं कर सकता गुरुवर, इसलिए यदि आज विष्णु ही मांगने के लिए आ गया है तो मेरा भाग्य खुल गया। ऐसा तो मांगने वाला दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला, वो मेरे सामने हाथ पसारे और मैं उसको ना कर दूं? महाराज, इतना उत्तम पात्र कोई मिलेगा नहीं, आप मुझे रोको नहीं, ये तो मांग रहा है, मैं आज इसको दूंगा ही। गुरु जी ने कहा कि देखो, तुम तो इनको बाद में दोगे, पहले मैं तुमको देता हूं, श्राप देता हूं कि जाओ, तुम्हारी राज लक्ष्मी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। कि कोई बात नहीं, मैं इधर से ले रहा हूं और इधर दे दूंगा, मेरे क्या है भाई, आपने मुझे दे दिया श्राप और मेरे पास जो कुछ मैं इनको दे दूंगा, ये श्राप तो मेरे पास रहेगा भी नहीं। इतने में विंध्यावली आई, उनकी स्त्री और स्त्री ने और पति ने, माने बलि ने और विंध्यावली ने, दोनों ने आहा उस समय में जल लिया, और जल लेकर के सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आहा, उन्होंने उनके चरण धोए, चरण धोकर के उन दोनों ने अपने सिर के ऊपर ज्यों ही चरणों तक रखा, देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, फूलों की वर्षा की, कि धन्य हो धन्य हो, तुम्हारे जैसे दाता इस संसार में मिलेंगे नहीं, भगवान को दे दिया, इससे बढ़कर और क्या तुम दाता बनोगे? ऐसा सुंदर उपाय, ऐसा सुंदर पात्र कहां मिलेगा? सब जगह आनंद ही आनंद छा गया। अब वो जब देने की प्रतिज्ञा हो चुकी है, भगवान अपने आसन से उठे कि राजन अब हम लेवे, कि महाराज ले हो। अब देखते देखते देखो हम लेंगे, पहले हम स्थिर हो जावे। खूब तो लंबे बन गए, खूब चौड़े बन गए, पैर भी उनका बढ़ता गया, बढ़ते 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 सारा का सारा पृथ्वी उनके चरणों में आ गया। पादयो महिम, दोनों चरणों में सारी पृथ्वी आ गई, रसातल आ गए, सब आ गए, और जितने पशु पक्षी आदि थे वो उनके पिंडलियों में आ गए, और उनके वस्त्रों के अंदर संध्या वगैरह ये सब आ गई, आकाश उनके नाभि में आकर स्थिर हो गया, धर्म उनके हृदय में आकर के बैठ गया, इस प्रकार से देवताएं उनके भुजाओं में आकर के बैठ गए, दिशाएं उनके कानों में आकर समा गई, जितने मेघ हैं बादल हैं वो सिर के केशों में आकर बैठ गए, और यमराज जी उनके भुवों में आकर के बैठ गए।